एक ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन दिमाग में लाइए जहां एक आम से मछुआरे को कैद करने के लिए किसी किसी आधुनिक सुपरमैक्स प्रिजन जैसी सिक्योरिटी लगाई गई है।
राइट, एकदम टॉप टियर सिक्योरिटी।
बिल्कुल, उसके हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हैं, 16 हाईली ट्रेन्ड गार्ड्स मतलब चार चार की शिफ्ट्स में उस पर नजर रख रहे हैं। ये रोमन एम्पायर की सबसे स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी थी।
हाँ, उस वक्त इससे ज्यादा एडवांस कुछ नहीं था।
पर फिर भी देखिए, सुबह होने तक वो इंसान वहां से बिल्कुल गायब हो जाता है बिना किसी निशान के। एक बंद कैद खाने से ऐसी एस्केप जो लॉजिक के बिल्कुल ही बाहर है।
सही बात है।
तो इस गहरी चर्चा में आज हमारा मुख्य उद्देश्य डॉक्टर क्रेग कीनर द्वारा एक्ट्स के चैप्टर्स 12 से 14 पर दिए गए लेक्चर के स्रोत का विस्तार से अध्ययन करना है। जब मैं इस मटेरियल को पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई इंटेंस हिस्टोरिकल थ्रिलर पढ़ रही हूँ।
हाँ, इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जैसे पॉलिटिक्स, मिरेकल्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स।
एग्जैक्टली, इस डीप डाइव में एंशिएंट पॉलिटिक्स और चमत्कार आपस में इस तरह टकराते हैं कि पूरा नैरेटिव एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। और हम देखेंगे कि कैसे लीडरशिप यानी नेतृत्व जेरूसलम में पीटर से हटकर विश्व स्तर पर पॉल की ओर बढ़ता है।
ये थ्रिलर वाला एंगल बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पुराने दस्तावेजों की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसेंशियली दो बिल्कुल ऑपोजिट पावर स्ट्रक्चर्स की टक्कर देख रहे हैं।
मतलब वर्ल्डली पावर और डिवाइन पावर।
बिल्कुल, एक तरफ वो वर्ल्डली पावर है जो मुकुट, सेना और डर के दम पर चलती है, और दूसरी तरफ एक ऐसी इनविजिबल डिवाइन पावर है जो इन सभी फिजिकल कंस्ट्रेंट्स को तोड़ देती है।
राइट,
और इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा फेस, या यूं कहें कि शुरुआती खलनायक, हेरोड अग्रिपा प्रथम था। यह हेरोड द ग्रेट के बाद जुडिया पर राज करने वाला पहला यहूदी राजा था।
पर अग्रिपा के बारे में एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। एक तरफ वो रोम का एक पपेट किंग था और रोमन लीडरशिप के बहुत करीब था, यहां तक कि कैलिगुला जो आगे चलकर रोमन सम्राट बना, हाँ, उसका खास दोस्त था।
हाँ, उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी।
तो फिर जुडिया के लोकल लोग, खास तौर पर जो कंजर्वेटिव फैक्शंस थे, वो उससे इतना जुड़ाव क्यों महसूस करते थे? उसने ऐसा क्या किया था जो रोम और जेरूसलम दोनों को एक साथ खुश रख पा रहा था?
देखिए, इसका कारण उसकी लीनियज और उसकी पॉलिटिक्स का एक बहुत ही शातिर कॉम्बिनेशन था। अग्रिपा के रगों में हास्मोनियन खून था जो उसे वहां की लोकल आबादी के लिए एक अपना नेता बनाता था।
अच्छा, तो एक लोकल कनेक्शन था।
हाँ हाँ, और अग्रिपा इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता था कि उसकी सत्ता बेशक रोम से आती है पर कुर्सी पर पकड़ लोकल लोगों को खुश रखने पर ही निर्भर करती है। वो एक पूरे पॉपुलिस्ट नेता की तरह बिहेव करता था।
तो जब उसने देखा कि कंजर्वेटिव जूडियन फैक्शन चर्च के लीडर से नाराज है, तो उसने जॉन के भाई जेम्स का सर कलम करवा दिया।
वही तो, ये कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव था, एक तरह का टेस्ट बलून।
डॉक्टर कीना इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल ऐड करते हैं। स्रोत के मुताबिक उस जमाने में सर कलम करने के लिए कुल्हाड़ी की जगह तलवार का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उसे ज्यादा मर्सीफुल माना जाता था। पर जेम्स को इस तरह मृत्युदंड देना, क्या ये सनहेद्रिन के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं था?
बिल्कुल बाहर था। सनहेद्रिन, जो वहां की रिलीजियस काउंसिल थी, उसके पास नॉर्मली मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं होता था
बिना रोमन अप्रूवल के। राइट,
एग्जैक्टली। पर अग्रिपा एक राजा था, उसके पास ये पावर थी। जब उसने जेम्स को मरवाया और देखा कि इस स्टेप से वहां की मेजॉरिटी कितनी खुश हुई, तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई।
उसने सोचा होगा कि अगर एक लीडर को मारने से इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो सबसे बड़े नेता को पकड़ने से क्या होगा।
सही पकड़ा आपने, इसीलिए उसने पीटर को गिरफ्तार कर लिया। और इसकी टाइमिंग देखिए, अनलेवेंड ब्रेड का त्योहार चल रहा था
तो पूरा शहर भरा हुआ था लोगों से।
हाँ, अग्रिपा एसेंशियली एक पब्लिक स्पेक्टिकल क्रिएट करना चाहता था लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए,
जिसे हम आज के दौर में एक मैसिव पीआर स्टंट कहते हैं। पर वहीं आकर मेरी सुई थोड़ी अटक जाती है। 16 गार्ड्स, जंजीरें, मुझे सच में समझ नहीं आता कि एक आम से मछुआरे के लिए अग्रिपा को इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ गई।
आपको क्या लगता है?
शायद उसे लगता था कि पीटर के सपोर्टर्स आकर उसे बचा लेंगे।
देखिए, बात पीटर के दोस्तों की नहीं थी। पिछली बार जब अर्ली चर्च के अपोसल्स को गिरफ्तार किया गया था, तो कुछ अजीब घटनाएं हुई थी। वो मिस्टीरियस तरीके से जेल से बाहर निकल आए थे।
ओह राइट, तो अग्रिपा रिस्क नहीं लेना चाहता था।
बिल्कुल नहीं, अग्रिपा कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहता था। वो एसेंशियली ये डिक्लेयर कर रहा था कि उसकी जेल रोम की ताकत का प्रतीक है जिसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता। पर इस पूरे सेटअप ने एक्चुअली आने वाले चमत्कार को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बना दिया।
ड्रामेटिक तो मतलब बहुत ही छोटा वर्ड है इसके लिए। रात का वक्त था, पीटर दो गार्ड्स के बीच बंधा हुआ था और अचानक जंजीरें गिर जाती हैं। एक फरिश्ता यानी एंजल आता है और कैदखाने के भारी लोहे के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं।
हाँ, और ये डिटेल बहुत महत्वपूर्ण है।
ऑनेस्टली जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये नैरेटिव थोड़ा एग्जैजरेटेड नहीं है। एक एंजल का आना और गार्ड्स का फ्रीज हो जाना, क्या प्राचीन साहित्य ऐसी स्टोरीज को सीरियसली लेते थे?
ये डाउट आना बहुत नेचुरल है, पर अगर हम उस वक्त के लिटरेरी और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझें तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज कन्वे कर रहा था। डॉक्टर कीनर एक्सप्लेन करते हैं कि एंशियंट साहित्य में, जैसे ग्रीक प्लेराइट यूरोपीडीज की कहानियों में, जब भी किसी दिव्य शक्ति की एंट्री होती थी तो उसकी निशानी यही होती थी कि दरवाजे अपने आप खुल जाते थे।
अच्छा,
तो ये कॉमन लिटरेरी ट्रोप था।
हाँ, और बेड़ियां गिर जाती थी।
उस वक्त के रीडर्स के लिए ये एक रिकॉग्नाइजेबल कोड था। ये इंसिडेंट ये एस्टैब्लिश कर रहा था कि अग्रिप्पा की वर्ल्डली सत्ता और रोमन मिलिट्री पावर इस डिवाइन शक्ति के सामने बिल्कुल यूजलेस थी।
और इस मैसिव डिवाइन इंटरवेंशन के बाद कहानी अचानक एक हास्य व्यंग्य यानी कॉमेडी सीन में बदल जाती है। एक ऐसी आयरनी जो सच में हैरान कर देती है।
बिल्कुल,
पीटर उन 16 गार्ड्स और लोहे के दरवाजों से तो निकल जाता है, पर आकर एक लकड़ी के दरवाजे पर फंस जाता है। वो जॉन मार्क की माँ मैरी के घर पहुंचता है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये एक संपन्न अपर सिटी घर था जहां लोग प्रार्थना कर रहे थे।
हाँ, और ये उस वक्त के चर्च डायनेमिक्स को समझने का एक बहुत अच्छा विंडो है। डॉक्टर कीनर बताते हैं कि शुरुआती सदियों में चर्च की कोई अपनी बिल्डिंग्स नहीं होती थी।
राइट, वो घरों में ही मिलते थे।
एग्जैक्टली, वो वेल्दी मेंबर्स के बड़े घरों में ही मिला करते थे। इनके पास रोडा जैसी सेविकाएं होती थी, और रोडा जब दरवाजे पर पीटर की आवाज सुनती है तो वो दरवाजा खोलने के बजाय खुशी के मारे अंदर भाग जाती है।
लोग पीटर की सेफ्टी और आजादी के लिए इंटेंसली प्रे कर रहे थे, पर जब रोडा उन्हें बताती है कि पीटर लिटरली बाहर खड़ा है तो उनके रिएक्शन देखिए, वो उस पर विश्वास ही नहीं करते।
हाँ, उन्हें लगता है ये कोई भूत होगा।
सही में, वो कहते हैं कि ये पक्का पीटर का भूत होगा या उसका फरिश्ता होगा। खुद पीटर को भी शुरू में लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है।
ये साइकोलॉजी बहुत डीप है। हम सोचते हैं कि एंशियंट लोग हर चमत्कार पर इजीली विश्वास कर लेते होंगे, पर यहां हम देखते हैं कि डीप फेथ रखने वाले लोग भी जब अचानक उनकी प्रार्थना का डायरेक्टली उत्तर मिलता है तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये इस अकाउंट को और भी ऑथेंटिक बनाता है।
बिल्कुल, फिर जब उन्हें आखिरकार विश्वास होता है, पीटर उन्हें पूरी बात बताता है और वहां से निकल जाता है। यहां पर स्रोत एक नए नेता का जिक्र करते हैं, जेम्स, जो जीसस के भाई थे।
हाँ, और ये एक बड़ा ट्रांजिशन पॉइंट था।
पीटर के जाने के बाद जेम्स जेरूसलम चर्च का एक नया कंजर्वेटिव और सुरक्षित नेता बनकर उभरता है।
वहां एक क्लियर शिफ्ट दिखता है। पीटर का रोल अब एक ट्रैवलिंग अपोसल का हो जाता है, और जेरूसलम की कॉम्प्लेक्स लोकल पॉलिटिक्स को हैंडल करने के लिए जेम्स एक सेफ और स्टेबल लीडर साबित होता है। पर एक बात सोचिए।
क्या?
इस सुबह के बाद उस राजा की हालत के बारे में सोचिए जिसकी नाक के नीचे से उसका सबसे बड़ा प्राइज निकल गया।
ओ अग्रिप्पा, उसका ईगो तो बुरी तरह हर्ट हुआ होगा। उसने उन गार्ड्स के साथ क्या किया जो उस रात ड्यूटी पर थे?
रोमन कानून इस मामले में बहुत ब्रूटल था। अगर आपकी कस्टडी से कोई कैदी भाग जाए तो गार्ड को वही सजा मिलती थी जो उस कैदी को मिलनी थी।
वेट, सच में?
हाँ, तो अग्रिप्पा अपना अहंकार और फ्रस्ट्रेशन उन चारों शिफ्ट के गार्ड्स पर निकालता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। ये उसके अहंकार का एक्सट्रीम पॉइंट था। उसने खुद को लाइफ और डेथ का सुप्रीम कमांडर समझ लिया था।
और उसका ये अहंकार उसके आखिरी दिन तक उसके साथ रहा। स्रोत के अनुसार हम देखते हैं कि इस एस्केप के बाद अग्रिप्पा सिजेरिया के उस मैसिव थिएटर में जाता है जिसे उसके दादा ने बनवाया था।
वही जगह जहां टायर और सिडोन के लोग उससे मिलने आए थे।
हाँ, और ये लोग ग्रेन यानी अनाज के लिए अग्रिप्पा पर निर्भर थे, तो मजबूरी में उन्हें अग्रिप्पा की चापलूसी करनी पड़ रही थी। इस सीन की डिटेल्स बहुत विविड है स्रोत में।
बिल्कुल, जोसेफस जो उस वक्त के एक मेजर इतिहासकार थे और लूक की राइटिंग्स दोनों इस इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं। अग्रिप्पा एक ऐसी शाही पोशाक पहनकर आता है जो प्योर सिल्वर थ्रेड से बनी थी।
वाओ, प्योर सिल्वर?
हाँ, तो जब सुबह की धूप उस पर पड़ती है तो वो लिटरली चमकने लगता है, और जब वो भाषण देता है तो भीड़ उसकी तरफ देखकर पुकारती है कि ये किसी इंसान की आवाज नहीं, एक भगवान की आवाज है।
वहां आकर मेरी समझ थोड़ी जवाब दी जाती है, क्योंकि डॉक्टर कीनर ने याद दिलाया कि ये वही अग्रिप्पा है जिसने गायस कैलिगुला को अपना गॉड कॉम्प्लेक्स सेटिस्फाई करने से रोका था।
वही तो आयरनी है,
जब कैलिगुला ने खुद को भगवान बनने की कोशिश की थी तो अग्रिप्पा ने उसे रोका था। जिस इंसान को इतनी गहरी समझ थी कि खुद को भगवान मानना एक सुसाइड मिशन है, वही अग्रिप्पा इस ट्रैप में खुद कैसे फंस गया?
ये एक चैलेंजिंग सवाल है।
इसका जवाब ह्यूमन साइकोलॉजी और पावर डायनेमिक्स में छुपा है। देखिए, एब्सोल्यूट पावर और कांस्टेंट फ्लैटरी इंसान के माइंड को रीस्ट्रक्चर कर देती है। जब आपको लगातार एक एको चेंबर में रखा जाता है जहां सिर्फ आपकी तारीफ होती है, तो आप अंधे हो जाते हैं। आप खुद को एक एक्सेप्शन मानने लगते हैं।
एग्जैक्टली। अग्रिप्पा ने उस फ्लैटर को तुरंत नहीं रोका, बल्कि उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। पर यहां डिवाइन पावर ने वापस इंटरवीन किया, और इस बार चमत्कार आजादी का नहीं बल्कि जजमेंट का था।
एक बेहद ग्रूसम जजमेंट।
वह तुरंत बीमार पड़ता है, और उसे आंतों की ऐसी बीमारी होती है जिसमें कीड़े उसे अंदर से खाने लगते हैं। दर्दनाक मौत।
ये स्पेसिफिक तरीके की मौत इतनी हाईलाइट क्यों की गई है प्राचीन स्रोतों में?
एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसी मौत जहां कीड़े शब्द रूप से किसी को खा रहे हों सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं मानी जाती थी। ये उन टायरेंट्स यानी तानाशाहों के लिए एक उचित मौत मानी जाती थी जिन्होंने खुद को डिवाइन पोजीशन पर रखने की कोशिश की हो,
जैसे एक सिंबल हो।
हाँ, अग्रिप्पा के अपने दादा हेरोड द ग्रेट की मौत को भी इतिहासकारों ने कुछ इसी तरह डिस्क्राइब किया था। ये स्रोत दिखाते हैं कि देखो, असली शक्ति किसके हाथ में है। जो इंसान खुद को गॉड समझ रहा था, उसे नेचर के सबसे छोटे जीवों ने खत्म कर दिया।
ये पूरा सीक्वेंस अहंकार के अंत को दर्शाता है। एक ऐसी सत्ता जो चांदी की पोशाक और गार्ड्स पर टिकी थी, अचानक खत्म हो जाती है, और इस उथल पुथल और पावर वैक्यूम के बाद फोकस कंप्लीटली जेरूसलम से शिफ्ट होकर एक नए शहर पर आ जाता है, एंटियोक।
एंटियोक जो उस वक्त एक बहुत कॉस्मोपॉलिटन सेक्टर था।
बिल्कुल, और वहां की चर्च का जो लीडरशिप था वो बहुत विविध यानी डाइवर्स था। वहां प्रोफेट्स और टीचर्स थे, जैसे बार्नाबास, सिमियन जिसे निजर कहा जाता था, जिसका रंग काला था और शायद नॉर्थ अफ्रीकन मुल्क का था, लूशियस था, सॉल था, और एक किरदार जिसका जिक्र मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, मनेन।
मनेन का बैकग्राउंड तो सच में बहुत यूनिक है।
ओ, लेकिन आगे चलकर बिल्कुल अलग आत्मिक रास्ता चुन ले। इस कनेक्शन के बारे में डॉक्टर कीनर और क्या बताते हैं?
डॉक्टर कीनर इस पॉइंट पर समझाते हैं कि इनका कनेक्शन एक वेट नर्स के जरिए था, यानी एक ऐसी धाई माँ जिसका दूध दोनों ने पिया था। रोमन समाज में इस अरेंजमेंट की बहुत डीप सोशल वैल्यू होती थी।
ओह, मतलब उनका स्टेटस सोसाइटी में काफी अलग होता था।
हाँ, जब किसी रॉयल परिवार के बच्चे के लिए वेट नर्स रखी जाती थी तो उस वेट नर्स का अपना बच्चा भी उसी महल में पाला बड़ा होता था। ऐसे बच्चों को एसेंशियली ब्लड ब्रदर्स माना जाता था। इस वजह से स्लेव्स या वेट नर्स के बच्चों को रोमन सोसाइटी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोशल मोबिलिटी मिल जाती थी। उनका शाही बैकग्राउंड बन जाता था।
तो मानिन के पास उस इलीट रोमन हेरोडियन दुनिया का पूरा एक्सेस था, लेकिन उसने वो सब छोड़कर एंटियोक में इस मूवमेंट का नेता बनना चुना। ये दिखाता है कि उस आत्मिक क्रांति में कितना बड़ा अट्रैक्शन रहा होगा, और यही एंटियोक एक आइडियल लॉन्चिंग पैड बन गया जहां से नया सफर शुरू होता है।
बिल्कुल सही। और फास्टिंग और प्रार्थना के दौरान होली स्पिरिट ने बार्नाबास और सॉल को नए मिशन के लिए चुनने का निर्देश दिया। ये उनके पहले के कॉलिंग का एक कॉन्फर्मेशन था।
तो एंटियोक से भेजे जाने के बाद उनका पहला स्टॉप होता है साइप्रस। ये जर्नी विया ऑगस्टा, जो एंशिएंट रोमन हाईवे था, वहां से होते हुए साइप्रस पहुंचती है। स्रोत कहते हैं कि रोमन सड़कें दिन के समय रिलेटिव सेफ्टी प्रोवाइड करती थी।
हाँ, और जब वो साइप्रस के कैपिटल पैफस पहुंचते हैं तो वहां उनका सामना एक नए प्रकार की सत्ता से होता है। राजनीति नहीं बल्कि जादू।
राइट। वहां उनकी मुलाकात गवर्नर सर्जियस पाउलुस से होती है, जो सेनेटोरियल क्लास का था। पर मुझे एक चीज थोड़ी अजीब लगी। एक हाईली एजुकेटेड रोमन गवर्नर ईस्टर्न विजडम में इतनी रुचि क्यों रखेगा कि अपने दरबार में एलिमास बार जीसस नाम के एक यहूदी जादूगर को जगह दे?
देखिए, उस वक्त यहूदी जादूगर काफी मशहूर थे। रोमन एलीट एंशिएंट मिस्टिसिज्म को लेकर बहुत फैसिनेटेड थे। उनका मानना था कि यहूदी जादूगरों के पास भगवान का कोई छुपा हुआ नाम है जिससे वो नेचुरल एलिमेंट्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। एलिमास वहां सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं था, वो एक ट्रस्टेड एडवाइजर था।
और वहीं पर जब जादूगर उनका विरोध करता है तो स्रोत में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। सॉल का नाम बदलकर पॉल हो जाता है, जिसका रोमन या लैटिन में मतलब होता है छोटा या स्मॉल। मैं सोच रही थी, क्या सॉल का पॉल बनना सिर्फ एक आत्मिक बदलाव था या रोमन दुनिया में एक्सेप्ट होने के लिए एक बेहतरीन पीआर स्ट्रेटजी या ब्रांडिंग थी?
इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। रोमन सिटीजन्स ट्रिया नोमिना सिस्टम फॉलो करते थे, यानी उनके तीन नाम होते थे। सॉल उसकी ज्यूइश आइडेंटिटी थी, पर एक रोमन सिटीजन होने के नाते उसके पास एक रोमन कॉग्नोमेन भी था जो पॉल था।
अच्छा, तो उसने स्ट्रिक्टली अपना एग्जिस्टिंग नाम यूज किया।
हाँ, जब वो एक रोमन गवर्नर के दरबार में था तो अपना रोमन कॉग्नोमेन रखना और ऑडियंस के मुताबिक खुद को ढालना एक सोची समझी और स्मार्ट स्ट्रेटजी थी। वो दिखा रहा था कि मैं इस रोमन वातावरण के अनुकूल हूँ।
ये सच में स्मार्ट था। और इसके बाद जो एनकाउंटर होता है वो बहुत इंटेंस है। पॉल उस जादूगर को सन ऑफ द डेविल कहता है, जो उसके नाम बार जीसुस यानी सन ऑफ जीसस का उल्टा है, और उसे कुछ समय के लिए अंधा कर देता है। ये ठीक वैसा ही था जैसा खुद पॉल के साथ उसके शुरुआती दिनों में हुआ था।
बिल्कुल, यहाँ डिवाइन पावर और मैजिक के बीच एक पावर एनकाउंटर होता है, और डॉक्टर कीनर इस पॉइंट पर आधुनिक उदाहरण भी देते हैं।
हाँ, स्रोत में उन्होंने कुछ मॉडर्न एग्जाम्पल्स का जिक्र किया है,
जैसे कॉन्गो में एक केमिस्ट्री प्रोफेसर के स्टूडेंट्स का डार्क मैजिक से सामना होना और प्रार्थना से उसका विरोध करना, या साउथ अफ्रीका में स्पिरिट्स के खिलाफ एक पावर एनकाउंटर। इन्हें संक्षेप में एक यूनिवर्सल थीम के रूप में जिक्र किया गया है स्रोत में। ये बताता है कि डिवाइन प्रेजेंस के आगे डार्क मैजिक का प्रभाव खत्म हो जाता है।
और इस दैविक शक्ति ने उस रोमन गवर्नर पर ऐसी छाप छोड़ी कि उसने उनकी बात मान ली। उस गवर्नर का प्रभाव उनकी अगली मंजिल तय करने में भी दिखता है। पोफोस से निकल के वो परगा आते हैं। परगा में 1,00,000 से ज्यादा आबादी थी, पर वहां रुकने के बजाय वो विया सेबेस्टियन से होते हुए अंदरूनी इलाके पिसिडियन एंटीओक जाते हैं,
जो कि एक छोटा सा रोमन कॉलोनी था जहां सिर्फ 5,000 वेटरन्स रहते थे।
वही ना, एक इतने बड़े शहर को छोड़कर वहां क्यों गए? स्रोत के अनुसार इसका कारण सर्जियस पाउलुस, जो साइप्रस का गवर्नर था, उसका रेकमेंडेशन लेटर हो सकता है, क्योंकि उसकी फैमिली वहीं रहती थी। ये तो एंशियंट दुनिया की नेटवर्किंग हो गई। कैसे एक गवर्नर की पहचान का इस्तेमाल नए शहरों में दरवाजे खोलने के लिए किया गया।
सही कहा, पेट्रोनेज उस वक्त बहुत जरूरी था। और वहां सिनेगॉग यानी यहूदी प्रार्थना स्थल का माहौल कैसा था?
डायस्पोरा में बोलने वाले हमेशा खड़े होकर बोलते थे। पॉल को उसकी जेरूसलम की ट्रेनिंग, क्योंकि वो गैमलियल का शिष्य था, इसके कारण बोलने का आमंत्रण मिलता है। ये सारी बातें इतनी इंटरकनेक्टेड हैं। इस गहन विश्लेषण को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी, जो इन स्रोतों से निकल कर आता है। हमने अग्रिप्पा की दिखावे वाली ताकत और एलिमास के जादू की ताकत देखी, जिनका अंत दर्दनाक मौत या अंधेपन में हुआ। लेकिन दूसरी ओर पीटर जंजीरों से आजाद हो गया, और पॉल बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने शब्दों से एक रोमन गवर्नर को प्रभावित कर सका।
बिल्कुल, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है दोनों के बीच।
तो अगर हम आज के इन्फॉर्मेशन एज के नजरिए से सोचें, तो हम किस तरह की ताकत या इन्फ्लुएंस को असली मानते हैं? क्या सच्ची ताकत वो है जो पीआर, दिखावे और चमक धमक पर टिकी है, या वो जो चुपचाप जंजीरें तोड़ने का काम करती है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सबको अपने अंदर ढूंढना चाहिए।